ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल ने दीर्घकालीन विकास और सामाजिक न्याय के लिए राजनीतिक स्थिरता को बताया जरूरी। सरकार द्वारा किशोरियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के विरूद्व टीकाकरण अभियान देशभर में शुरू। टीका सुरक्षित है, निश्चिंत होकर लगवाने की स्वास्थ्य मंत्री डॉ सुधा गौतम ने की अपील। काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर, विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में है सातवें स्थान पर। और जापान में आज हुए चुनाव का किए गए सर्वेक्षण ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी मोहम्मत मिलने की जताई है संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल ने कहा है कि दीर्घकालीन विकास, समृद्धि और सामाजिक न्याय के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। आज काठमांडू में आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की रजत जयंती तथा नेपाल आदिवासी ज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति पोटेल ने दीर्घकालीन विकास, समृद्धि और सामाजिक न्याय के लिए राजनीतिक स्थिरता की जरूरी पर जोर दिया। राष्ट्रपति पोटेल ने कहा कि आदिवासी जनजाति समुदायों की भाषा, लिपि, संस्कृति, परंपरा, मूल्य मान्यताएं, ज्ञान प्रणालियां और धार्मिक विश्वास सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं है, बल्कि वे नेपाल की राष्ट्रीय पहचान के अमूल्य आधार भी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ये सम्मेलन आदिवासी ज्ञान को बौद्धिक और नीतिगत बहस की मुख्य धारा में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नेपाली कांग्रेस ने प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को परिचालित करने के लिए फागुन 21 को लक्षित करते हुए मेरा 21 दिन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है। पार्टी की केंद्रीय कार्य संपादन समिति की आज हुई वर्चुअल बैठक ने निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए फागुन 21 के लिए मेरा 21 दिन कार्यक्रम चलाने का फैसला किया। निर्णय के मुताबिक फागुन 1 से 21 तक जिस स्थान पर जिसकी पदगत जिम्मेदारी तय होगी वह वहीं तैनात होकर काम करेगा। इसी तरह जिम्मेदारी निभाने के दौरान केंद्र, प्रदेश, जिला और क्षेत्र द्वारा निश्चित जिम्मेदारी के साथ निर्धारित स्थानों पर भेजे गए प्रतिनिधि वहां का कार्य पूरा करने के बाद वापस अपने अपने जिला, क्षेत्र, पालिका और वार्ड में केंद्रित रहेंगे। बैठक में केंद्रीय सदस्य तारामान गोरुंग के संयोजकत्व में केंद्रीय अनुशासन समिति का गठन भी किया है। इसी बैठक में उपसभापति विश्व प्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिचालन निर्देशिका 2082 और नेपाली कांग्रेस सार्वजनिक कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका 2082 को संशोधन सहित पारित किया गया है। आगामी फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली अंतर्गत अब तक 88 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1,09,63,000 मतपत्रों की छपाई हो चुकी है। ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी है। आयोग के सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जीसी के अनुसार गोरखा, म्यागदी, पर्वत और नवलपरासी, सुस्ता पश्चिम के लिए आज मतपत्रों की छपाई पूरी हो गई है, जबकि 37 जिलों के लिए मतपत्रों की पैकिंग प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 9 प्रकार की निर्वाचन सामग्रियां केंद्र से ही भेजने का निर्णय किया है। आयोग के सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपाने के अनुसार 9 प्रकार की निर्वाचन सामग्रियां केंद्र से भेजी जाएंगी, जबकि 37 प्रकार के निर्वाचन सामग्रियों का प्रबंध जिलों में ही करने की तैयारी की गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सरकार ने आज से किशोरियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण अभियान देश भर शुरू किया है। स्वास्थ्य सेवा विभाग के बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण शाखा के अनुसार आज से फागुन 15 गते तक देशभर में कक्षा 6 की छात्राओं और विद्यालय से बाहर 10 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को टीका लगाया जाएगा। अभियान के तहत पिछले वर्ष के एचपीवी टीकाकरण अभियान में छूटी हुई वर्तमान में कक्षा 7 से 10 में पढ़ने वाली किशोरियों और 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की विद्यालय से बाहर की किशोरियों को भी इसी अभियान में टीका लगाया जाएगा। वहीं हिमालयी एवं हिमपात वाले जिलों में यह अभियान चैत माह में संचालित किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को बढ़ाने का मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण है, इसलिए इसके विरुद्ध एचपीवी टीकाकरण जरूरी है। विद्यालयों में और अन्य किशोरियों को टीकाकरण केंद्रों पर एचपीवी टीका लगाया जाएगा। नेपाल में महिलाओं में होने वाले विभिन्न कैंसरों में सर्वाइकल कैंसर दूसरे स्थान पर है, जबकि कैंसर से होने वाली महिलाओं की मृत्यु में ये पहले स्थान पर है। आज से शुरू हुए एचपीवी टीकाकरण अभियान के लिए स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री डॉ सुधा गौतम ने वीडियो संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि टीका सुरक्षित है, इसलिए सभी निश्चिंत होकर लगवाएं। उन्होंने 30 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं से नियमित रूप से सर्वाइकल कैंसर की जांच कराने का भी अनुरोध किया है। काठमांडू घाटी का वायु प्रदूषण आज अस्वस्थ स्तर पर पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता मापने वाले एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार आज दोपहर तक काठमांडू घाटी का वायु प्रदूषण स्तर 175 AQI तक पहुंच गया था। आज काठमांडू को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 7वें स्थान पर सूचीबद्ध किया गया है। वातावरण विभाग के महानिदेशक ज्ञानराज सुवेदी के अनुसार मौसम का सूखा रहना, हवा का न चलना, उद्योग कल कारखानों का संचालन और तीव्र विकास निर्माण कार्यों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ा है। सरकार ने ज्येष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा में 50% किराया छूट देने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समिति की आज हुई बैठक में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री श्रद्धा श्रेष्ठ ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन में 50% छूट देने की व्यवस्था नीतिगत रूप से लागू हो रही है। इसी के अंतर्गत सार्वजनिक यातायात में शामिल हवाई यात्रा के किराए में छूट देने के लिए मंत्रालय हवाई कंपनियों के साथ समन्वय करेगा। मंत्री श्रेष्ठ ने यह भी जानकारी दी कि काम करने में सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को आगामी वर्ष के बजट में आय अर्जन से जोड़ने के उद्देश्य से कार्यक्रम लाने पर चर्चा चल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार सभी 7 प्रदेशों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान में चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। शुरुआती अनुमान बता रहे हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी को बड़ी जीत मिल सकती है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 4 महीने के बाद ही उन्होंने जनता से स्पष्ट बहुमत पाने के लिए यह चुनाव करवाया है। उन्होंने अचानक से चुनाव का ऐलान कर दिया था। जापान में ज्यादातर समय एलडीपी की अगुवाई वाली सरकार रही है, क्योंकि वहां मजबूत विपक्ष नहीं है। कुछ लोगों ने इस चुनाव को जोखिम भरा कदम कहा था, क्योंकि एलडीपी संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो चुकी थी और कोमेटो पार्टी के साथ उसका पुराना गठबंधन भी टूट गया था। लेकिन ताकाइची की लोकप्रियता ने पार्टी को मजबूत किया है और उनकी सरकार की अप्रूवल रेटिंग ज्यादातर समय 70% से ऊपर रही है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि एलडीपी और जापानी इनोवेशन पार्टी का गठबंधन निचले सदन की 465 में से करीब 300 सीटें जीत सकता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल ने दीर्घकालीन विकास और सामाजिक न्याय के लिए राजनीतिक स्थिरता को बताया जरूरी। सरकार द्वारा किशोरियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध टीकाकरण अभियान देशभर में शुरू। टीका सुरक्षित है, निश्चिंत होकर लगवाने की स्वास्थ्य मंत्री डॉ सुधा गौतम ने की अपील। काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण उच्च स्तर पर, विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में है 7वें स्थान पर और जापान में आज हुए चुनाव का किए गए सर्वेक्षण ने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी बहुमत मिलने की जताई है संभावना। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।